ओम शांति। कितना बड़ा काम संसार को नया बनाना, स्वर्णिम बनाना। रात को भी दिन में बदलना होता है तो सूरज निकलता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवान को स्वयं आना पड़ता है सृष्टि को नूतन करने के लिए, स्वर्णिम युग यहां लाने के लिए। जैसा हम वर्तमान संसार की स्थिति को देख रहे हैं, समस्याओं का अंबार लगता जा रहा है, दुख भय तमोप्रधानता विषय विकार सबका साम्राज्य हो गया है हर एक के मन पर। युग बदलना, भगवान आए इस महान कार्य के लिए और हमें अपना साथी बनाया। पहले तो हम सबको ये बात खुशी और गर्व होना चाहिए कि भगवान ने हमें योग्य समझा इस महान कार्य के लिए। चिंतन करेंगे सभी, योग्य समझा भी और योग्य बनाया भी। बहुत ही खुशी की बात है कि हम भगवान के काम आ रहे हैं। तन मन धन योग्यताएं बुद्धि जितने भी हमारे टैलेंट्स हैं वो सब भगवान के काम आ गए, दुनिया को नया बनाने के लिए। हम आधार हैं, हमें याद रखना है हम इस सृष्टि के आधार हैं। हमारी स्थिति ही सृष्टि की स्थिति को निर्धारित करती है। हम सतो प्रधान तो सृष्टि भी वैसी ही, और छोटे छोटे रूप में देखें हम पूरी तरह ईश्वरीय सुखों में सुखी होंगे तो संसार के दुख नष्ट होते जाएंगे। हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने स्वमान को बढ़ाकर निर्भय बनेंगे। संसार की अनेक अनेक आत्माएं भय से मुक्त होंगी। हम बहुत खुश रहेंगे, संसार की आत्माओं को हमारी खुशी के वाइब्रेशंस बल देंगे। हम आधार हैं, पहला आधार जो आज की मुरली थी सवेरे की, सबको याद है, प्योरिटी। पवित्रता के बल से तुम इस सृष्टि को पावन करते हो, प्रकृति को भी पावन करते हो। हम सब इस विषय को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आज तो बाबा की सारी मुरली एक ही बात पर थी, और सबसे पावरफुल बात थी तुम्हें केवल प्रवाह करनी है एक शिव बाबा की, बाकी की नहीं। इसका अर्थ है कि शिव बाबा ने जो कह दिया बस वो करना है। लोग क्या कहते हैं, विरोध करते हैं, विघ्न डालते हैं, उसकी चिंता नहीं करनी है। अपने में बल बढ़ाना है। और मैं आप सभी से ये कहूंगा, कई भाई बहने ऐसे भाग्यवान भी हैं जो पूरा परिवार ज्ञान को अपना रहा है, पवित्रता में उनकी कोई बाधा नहीं है, वो स्वतंत्र हैं अपने जीवन को महान बनाने के लिए, अपनी पवित्रता को शिखर पर ले जाने के लिए। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी प्योरिटी बहुत साधारण रह जाती है, उनकी प्योरिटी संसार के लिए बल नहीं बनती। हमारी प्योरिटी संसार के लिए बल है, आधारशिला है। अगर हमारी प्योरिटी साधारण रह जाती है तो हम संसार की बहुत आत्माओं को भी कुछ दे नहीं पाएंगे। मैं तीन बातें याद दिला दूं जो तो तीन मास में बाबा के महावाक्यों में आई हैं। सबसे लास्ट की बात थी, जितना जितना तुम योग युक्त रहोगे तुम्हारी पवित्रता की लाइट बढ़ती जाएगी। दूसरी बात थी, इससे पहले साकार मूल्यों की बातें हैं ये। जब तुम संपूर्ण पावन बन जाओगे तो तुमसे साक्षात्कार होने लगेंगे। तीसरी बात उससे पहले थी, गद्दी नसीन वही बनेंगे जो पावन बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाली आत्माएं गद्दी नसीन बनेंगी। तो हमें अपनी प्योरिटी को स्वयं बढ़ाना है। हर व्यक्ति अपने को स्वयं जानता है। पास का जीवन किसी का कैसा भी बीता हो, लेकिन वर्तमान में हमें गाइड कर रहा है स्वयं भगवान। मुरली में एक बहुत अच्छी बात आई है, आप सुनेंगे। लोग भगवान को पुकारते तो हैं, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ। बाबा को ही आना पड़ता है इस कार्य के लिए। लेकिन संसार में किसी भी धर्म ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं है कि आत्मा पतित से पावन कैसे बन सकती है। पहले तो फिलोसॉफिकल डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है। कोई कहते आत्मा तो है ही पवित्र, बनाने की बात कहां। कोई कह देते आत्मा तो निर्लिप्त है, पर बाबा ने आकर सत्य ज्ञान दिया। एक बहन किसी से ज्ञान चर्चा कर रही थी। वो बड़ा तेज तराक था। बहन भी थोड़ी तेज थी। कहा, बहन जी ये सुख दुख तो शरीर में होते हैं, आत्मा में थोड़ा ही, ये तो शरीर के हिस्से हैं। उसने थोड़ा समझाने की कोशिश की, वो नहीं माना, तो इसने एक माचिस मंगवाई और माचिस की तीली जला के उसको हाथ, उसके हाथ को जरा सी टच कर दी। उसने हाथ खींच लिया कि बताओ किसको दुख हुआ। मुर्दे को तो चिता पर रख देते हैं, जला दिया जाता है, उसको दुख होता है। अब वो बेचारा चुप हो गया। बात तो ठीक है भाई, आत्मा है तब तो ये दुख हुआ। कहा, हाथ क्यों हटाते हो, दुख तो शरीर को होता है, तुम्हें थोड़ा ही। तो लोगों में भ्रांतियां बहुत हुई ज्ञान के बारे में। सत्य ज्ञान तो लोप हो गया। जितने जितने हम पवित्र बनेंगे और भविष्य का हमें नशा रहेगा। बहुत ध्यान दे बाबा की बात पर। सूक्ष्म बात बाबा एक कहा करते हैं, अपनी देवी दुनिया का आह्वान करो, आह्वान करो। इसका अर्थ है आने वाली देवी दुनिया हमारी आंखों में हो, दिख रही हो, ये आई की आई, हम इसमें जाएंगे। ऐसे देवता हम होंगे जैसे ब्रह्मा बाबा को। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास उनका ही है। दैवी दुनिया सामने दिखाई देती थी, आ रही है ये दुनिया। वो तो स्वयं ब्रह्मा थे, तो क्रिएटर नई दुनिया के। बहुत नशा था उनको, केवल ये नहीं मैं जाकर क्या बनूंगा, लेकिन ऐसी दुनिया आ रही है। तो अगर हमारी आंखों में वो होगी तो उसका आह्वान होता रहेगा, तो भविष्य का बहुत अच्छा नशा और अपनी दैवी दुनिया आंखों में रहे। जैसे स्टूडेंट 12वीं क्लास करके मेडिकल में पहुंच गया, उसका एडमिशन हो गया, या तो कोई उस फील्ड का बैठा नहीं, एक दो दिखाई दे रहे हैं। पहले दिन से उसे नशा हो जाता है, मैं डॉक्टर बनूंगा, ऐसे ऐसे पेशेंट आया करेंगे, मैं ऐसे ऐसे सबको ठीक करूंगा, डॉक्टर। और वो कोशिश करता है सेकंड ईयर में आते अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा दे। बहुतों को देखा हमने, वो भी सेकंड ईयर में आए, थर्ड ईयर में आए, डॉक्टर लिखने लगे। एक नशा होता है, अपने फ्यूचर की स्मृति रहती है। हमें भी जो स्टेटस हमें मिलने जा रहा है, जिसके लिए हम ये सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिसके लिए स्वयं भगवान बाप टीचर सदगुरु बनकर हमारी हमें मार्ग दिखा रहे हैं, हमारी पालना कर रहे हैं, उस भविष्य की हमें छवि सामने रखनी है, ये बनना है, तो उसका आह्वान होता रहेगा। मैं कुछ बातों पे ध्यान दिलाऊं, आज की दुनिया को देखकर यदि दुनिया वालों को कहा जाए, दुनिया में जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें कहा जाए कि ऐसा सतयुग आएगा इस धरा पर, तो वो उसे हमारी कल्पना ही समझेंगे। ये दुनिया और स्वर्णिम युग में बदल जाए बहुत कठिन। हम उन्हें बताएं, आजकल देखो मकान बनाने के लिए कोई 100 गज जमीन लेता है, कोई 200 लेता है, कोई 300 500 हो गई तो बहुत बड़ा मकान, गौरव से बताएगा 500 गज में है मेरा मकान। और सतयुग में एक एक माता का मकान कितना होगा? माताएं बोलो, आप जितना, दिल्ली जितना, तो घूमते घूमते थक जाएंगी आप तो। बड़े बड़े घर होंगे, वो तो बाबा नासा चढ़ाता है दिल्ली जितना, बाकी कम से कम 1 वर्ग किलोमीटर में तो छोटे से छोटा महल भी होगा, क्योंकि उसी में गाय, तालाब, सुंदर बाग बगीचे, जो कुछ उगता है फल फूल, वो भी उसी में होंगे। तो अगर हम किसी को बताएं ऐसी दुनिया आएगी, आजकल के शहरों को देखो, भीड़ भाड़, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, गलियां भी छोटी छोटी, कैसा तंग जगह है आजकल दुनिया में। हमारे यहाँ तो हमारे आश्रम खुले खुले हैं, तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि ऐसी दुनिया भी आएगी, पर आएगी। युग बदल रहा है और बदलने वाला भी स्वयं क्रिएटर है इस सृष्टि का, हमें उसने अपना साथी बनाया। तो एक दो बात पे ध्यान देंगे, देवताओं के लिए प्रसिद्ध है कोई अप्राप्त वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में, और बाबा ने इसको टर्न कर दिया था, तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाए कोई अप्राप्त वस्तु नहीं ब्राह्मणों के खजाने में। बाबा की मुरली में 2 शब्द आए हैं पीछे, तुम्हें नशा रहे पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। सत्य ज्ञान के लिए भी तो संसार भटक रहा है। मैं बहुत पहले कभी पूना में जब गया, पहले 1-2 बार, तो मेरी बहुत इच्छा होती थी जो शास्त्रों के विद्वान हैं उनसे मिलूं जरा। मैंने पूछा, पूना में कोई शास्त्रों के अच्छे विद्वान हैं आप लोगों को पता है? कहा, यहाँ तो इंस्टीट्यूशन ही है। उस समय बताया 1100 विद्वान रिसर्च करते हैं शास्त्रों पे। मैं सुन के हैरान रह गया, फिर भी ये नहीं जान पाते मैं कौन हूँ। घर का तो किसी को अंदाज ही नहीं कहाँ है। हमें जो कुछ जानना था वो जान लिया, तो स्वर्ग के स्वर्णिम युग के संस्कारों को जागृत करने के लिए ऐसी संतुष्ट आत्मा बनना होगा। पाना था सो पा लिया, भगवान की प्राप्ति, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, जो कुछ जानने की इच्छा थी युगों से वो इच्छा पूर्ण हो गई। एक इस बात पे ध्यान देंगे। दूसरी बात है सर्व खजानों से भरपूर। अभी मैं जिस मुरली की चर्चा करता आ रहा हूँ 2-4 दिन से, वो कल आ रही है 7 तारीख की, 7 फरवरी की। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, 10-12 बातें उसकी नोट करेंगे। जीवन के सुंदर सुंदर राज एक एक लाइन में है। एक राज सुना देता हूँ, कल आप अंडरलाइन कर लेना उसे। अगर किसी को धन पदार्थ वैभव पाने में कठिनाई होती है, मेहनत बहुत होती है, तो समझ लो ज्ञान धन की कमी है। नोट कर लेना कल अच्छी तरह उस मुरली से। ज्ञान धन जिनके पास बहुत ज्यादा है, जन्म जन्म धनवान रहेंगे, तो सर्व खजानों से भरपूर। खजाने हमारे बहुत अलौकिक हैं। जब हम छोटे थे और ज्ञान सुनते थे, मधुबन में थे, तो जब बाबा की मुरली में ही आता था ना, सुख शांति प्रेम खुशी ये तुम्हारे खजाने हैं। हम सोचते थे ये खजाने कैसे हैं भाई, इनमें पैसे थोड़ा ही हैं कुछ। फिर पता चला धीरे धीरे इस संसार के बहुत धनवान लोग खुश नहीं रहते, सुसाइड कर लेते हैं। मेरे पास आने लगे युवक, बहुत धनवान हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो समझ में आया खुशी बहुत बड़ा खजाना है। देखने में आता था जिन घरों में टकराव है शांति नहीं है, उनके पास धन भी है, अच्छा बिजनेस है, अच्छे मकान हैं, बच्चे हैं, लेकिन टकराव है स्त्री पुरुष का, न शांति न प्रेम। तो उन्हें भी लगता था हमारा ये धन किसी काम का नहीं। संबंधों में प्यार हो जाए, अपनापन हो जाए, जीवन में शांति हो जाए, तो ये सब धन तब सार्थक माना जाएगा। तो समझ में आ गया सुख शांति पवित्रता खुशी और प्रेम संतोष, ये सब बहुत बड़े खजाने हैं। बचपन से ही पढ़ते आते थे संतोष सबसे बड़ा धन है, कबीर ने बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिख कहे हैं इस पे। तो अब हमें संतुष्टता का जो प्रैक्टिकल लाभ है वो दिखाई देता है। एक मुरली चल चुकी है संतुष्टता पर अव्यक्त, संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना, संतुष्टता सर्व शक्तियों का सहज ही आह्वान कर लेती है, संतुष्टात्मा सबको और भगवान को भी प्रिय होती है। तो जिसे देवता पूरी तरह संतुष्ट है उन्हें कुछ चाहिए नहीं। हम भी अपनी स्थिति ईश्वरीय खजानों के आधार से संतुष्ट बनाएं, बिल्कुल संतुष्ट मणि बन जाएं, छोटी चीजों के पीछे न भागें। और बाबा जैसे हर बार ये बात हमें बता रहे हैं, सबसे ज्यादा असंतुष्ट करता है मनुष्य को नाम मान की इच्छा। एक व्यक्ति है, उसको ये संकल्प रहता है मैं भी तो पुराना हूं, मुझे भी ये चांस मिलना चाहिए। अब चांस देने वाले उसको वैसा योग्य नहीं समझते तो चांस नहीं देते। अब उसके जीवन में असंतोष, सारी खुशी चली गई क्योंकि दूसरे को चांस मिल गया, वो उससे जूनियर है लेकिन योग्य है। तो ये बातें भी कईयों को बहुत असंतोष में ले जाती हैं। इनसे थोड़ा बचेंगे। एक चीज हमें नहीं मिल रही है तो जो हमें मिला है उसका आनंद तो लेना सीखें। बहुतों को ये भी हो रहा है कि उनके पास बहुत कुछ है लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो बहुत कुछ है उसका सुख ही नहीं है। सब चेक कर ले अपने को और ये भी जान ले, अगर हम उस सुख में रहने लगे, अगर उसके कारण हम अपनी स्थिति को सुंदर बनाते चले, तो हमें अवसरों के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा, हमें अवसर मांगने नहीं पड़ेंगे, अवसर हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। करके देख लें सभी, हमें अपने को योग्य बनाना है। केवल बाबा हरेक की योग्यता को यूज अवश्य करता है, उसको तो योग्य आत्माएं चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजों पे ध्यान दे। देखो देव युग में सभी के चेहरे सभी का शरीर कैसा होगा, कंचन काया, चेहरों पे चमकता हुआ तेज, सुख शांति पवित्रता धा संपदा, वो हम सब यही प्राप्त कर रहे हैं। अपनी प्योरिटी के महत्व को तो बहुत समझना है। मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह महसूस करता है बहुत साल से, कई बार बाबा की ये बात सुनी, सबने सुनी है, तुम्हारा एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है और एक एक संकल्प बहुत महान है, महान। तो सबसे ही मुझे ये आभास होने लगा था कि जो बहुत पवित्र आत्माएं हैं, जिनके चित्त में विश्व कल्याण की भावना नेचुरल हो गई है, सबके प्रति कल्याणकारी दृष्टि, शुभ दृष्टि, शुभ भावनाएं, उनके एक एक संकल्प का प्रभाव सारी सृष्टि पर पड़ता है। इस बात ने मुझे बहुत अंतर्मुखी किया जीवन में कि तुम क्या सोच रहे हो, ये जा रहा है सारे संसार में, तुम जो सोचोगे उसका गहरा प्रभाव संसार पर पड़ेगा। तो बाबा ने बहुत अच्छा महावाक्य गुह्य उच्चारण कर दिया था, तुम्हारी विश्व कल्याण की भावना भी विश्व का कल्याण करती रहेगी। बड़ी सूक्ष्म बातें, आनंद देने वाली ये ज्ञान की बातें हैं। हमारी प्योरिटी इस प्रकृति को पावन करती है। प्रकृति को पावन करना किसी वैज्ञानिक को नहीं आता, कोई पॉलिटिशियन इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, नेता इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो केवल पवित्र आत्माएं। हमारी पवित्रता से ये संसार, देखो क्या होता है, सभी ने सुन ली है ये मुरली भी, अब से 3 संडे पहले, तुम जहान के नूर हो, परम पवित्र आत्माएं हो, कितने सुंदर सब थे, तुम इस संसार में न होते तो ये संसार, ये जहान वीरान हो जाता। पवित्र आत्माएं इस संसार में हैं तो मानवता जीवित है, ईमानदारी बची है, इंसानियत बच गई है थोड़ी सी, नहीं तो नष्ट हो रही है। महान आत्माएं भी न होती तो वो मानवता, इंसानियत, नैतिकता, ईमानदारी, सत्यता संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाती। अपने महत्व को समझें, अपनी प्योरिटी को बहुत ज्यादा महत्व दें और शरीर को भी स्वस्थ करें। शायद कल की मुरली में है, स्वस्थ कल की मुरली में है। अब बहुत ही गहरी बात है, मुझे भी वो समझने में देर लगती आई है। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो उसका असर स्वस्थ रहने पर बहुत गहरा होगा। जो लोग बहुत निगेटिव सोचते हैं वो ज्यादा बीमार हैं, और जो बीमार तो हैं पर निगेटिव नहीं सोचते, बहुत पॉजिटिव हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनकी बीमारियां भी चली जाती हैं। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जो केवल सोच सोच कर बीमार हैं, सोचने के कारण उनकी बीमारी बढ़ी है। लास्ट टाइम पूरा हो रहा है, एक छोटा सा अनुभव सुना देता हूं। बाबा क्या करता है, कोई गुजरात की माता ने फोन किया होगा मुझे कुछ दिन पहले, मेरी लड़की को ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी वो कन्या। अभी जब कोई प्रॉब्लम सुनाता है तो मैं सभी समस्याओं का हल थोड़ा ही जानता हूं, मैं जरा ऊपर से जोड़ता हूं अपने को, और मेरे मुख से निकला कि बाबा को भोग लगवा दो। मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया क्योंकि समस्या काफी उनकी भारी थी। आज फोन आया कि भोग लगवाया और चमत्कार हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, सारे विघ्न हट गए, बीमारियां हट गई, उसको नींद नहीं आती थी, नींद आने लगी, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो पढ़ने लगी। मैं सोचता रहा वाह प्रभु तेरी लीला, राजी हो गया ना भगवान उस पे, भोग खा के भोलानाथ प्रसन्न हो गया। मुझे तो भूल भी गया था, मैं क्या किसको बताता हूं, मुझे याद तो नहीं रहता, लेकिन भगवान से जिनका सच्चा प्यार है, जो बहुत पॉजिटिव हैं, जो बहुत प्रसन्न हैं, उनकी बीमारियां भी ज्यादा नहीं चलती हैं, सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तो हम सभी सतयुगी जीवन जैसा सुख यहां अपने में ले आए, इच्छा मात्रम अविद्या बन जाए। तभी तो ब्राह्मणों का जन्म एक जन्म है ना, पहला 21 में ये भी तो जुटता है। हम बहुत सुखी हों और हमारा सुख स्थूल सुख नहीं है, अतिंद्रिय सुख है, उसमें यदि हम आ जाते हैं तो सतयुग से ज्यादा सुख हमें आनंद यही महसूस होने लगता है। अब हम चलेंगे सतयुगी सीन सामने रखते हुए, अपने सतयुगी स्वरूप में स्थित होते हुए। गहरी फीलिंग में बैठेंगे, मनुष्य देवता बनने वाले, संसार के आधार मूर्त हम आत्माएं हैं।
रहे आत्मा सदा सुंगारी,
देवी देवताओं